सुप्रभात। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की ओर से दूर शिक्षण प्रणाली के तहत कक्षा 9वीं हेतु काव्यखंड ट्रस्कान द्वारा रचित सवैये के अंतिम और चौथे भाग में आपका स्वागत है। ट्रस्कान वाकई रस की खान थे। कृष्ण भक्ति की लगन उन्हें ऐसी लगी कि वे उसमें डूब कर तर गए। सच में कहा गया है, कृष्ण भक्ति चीज ही ऐसी है कि जो उसमें नहीं डूबता वह डूब जाता है, यानी कि उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, और जो पूरी तरह डूब जाता है, निमग्न हो जाता है, वह तर जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रेम को पाने के लिए किसी विशेष विद्या या ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो कहा गया है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ट्रस्कान ने इसी प्रेम को पढ़कर उनके नाम यानी कि कृष्ण के नाम अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसी प्रेम की दीवानी गोपियाँ थीं। कृष्ण के अपने प्रेम को जग जाहिर नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि वे स्त्री की मर्यादा में रहना चाहती थी। अपने प्रेम को दूसरों पर प्रकट करना स्त्री की मर्यादा नहीं है, लेकिन कृष्ण तो एक जादूगर हैं। आपने पाइड पाइपर और फैमलिन की कहानी तो पढ़ी ही होगी, किस तरह सारे चूहे उसके मुरली की धुन को सुनकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। वही स्थिति गोपियों की भी होती है। वे कृष्ण के मुरली की बांसुरी की दीवानी हैं। वे कृष्ण के मुरली धुन की दीवानी हैं और मुरली से ईर्ष्या भी करती हैं, लेकिन उसकी धुन पर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही नहीं, लोक लाज की भी उन्हें चिंता नहीं रहती है। श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। उनकी मधुर मुस्कान एक ओर जहां उनकी सुंदरता बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा उनकी मुरली की मधुर तान तथा उनका गोधन गायन लोगों पर जादू सा असर करता है। इस तरह श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने वश में कर रखा है। कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की व्यवस्था का सजीव चित्रण ट्रस्कान के चौथे सवैये में हुआ है। क्या कहती हैं गोपियाँ? काननी दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गए हैं तो गए हैं। टरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितनो समझई हैं। माई रेवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई हैं। काननी यानी कानों में दय देकर अंगुरी उंगली रहिबो रहूंगी, गोपियाँ कहती हैं रहिबो रहूंगी, धुनी धुन मंद मधुर स्वर में बजे हैं बजाएंगे। मोहनी मोहने वाली तानन तानों या धुनों से अटा मतलब अटारी अट्टालिका गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत गए हैं गाएंगे। तेरी पुकार कर बुलाना तेरी माने पुकार। सिगरे सारे चारों तरफ काल ही कल समझई हैं समझाएंगे। माई री हे माँ वाह का मतलब वह उसके संहारी संभाला न जय हैं नहीं जाएगी। तो इस सवैये में रसखान क्या कह रहे हैं, गोपियों का के मनोभावों का वर्णन कर रहे हैं। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वे चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसीलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, अपने कानों से नहीं सुनेंगी, और उसके लिए वे क्या करेंगी, अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी, हाथ रख लेंगी, ताकि उनके मुरली की धुन सुनाई न पड़े। क्यों ऐसा है? क्योंकि वे जानती हैं कि जब उनके कानों में मुरली का स्वर पड़ेगा तो वे मंत्र मुग्ध हो जाएंगी और न चाहते हुए भी कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर, अट्टालिका पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत क्यों न गाएं, जब तक वे उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला, इसीलिए वे अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी, अंगुली डालकर रखेंगी, ताकि उनके मुरली की मधुर धुन उन्हें सुनाई न पड़े और वे अपना जादू उन पर न चला सकें, कृष्ण गोपियों पर अपना जादू न चला सकें। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें। वे गोपियां कहती हैं कि हम उसे बेअसर कर देंगे, बेअसर मतलब हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अंत में वे क्या कहती हैं कि वे ऐसा तो कर सकती हैं, अपनी विवशता को जग जाहिर नहीं करना चाहती हैं, लोगों को पता न चले कि वे किस कदर उनके प्रेम में पागल हैं, इसलिए उनकी धुन को वे सुनना नहीं चाहती हैं, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि कृष्ण से उनका कितना लगाव है, कितना प्रेम है, और जब वे मुरली की मधुर ध्वनि सुनेंगे उनके कानों में चली गई तो फिर वे अपने वश में नहीं रह पाएंगे। वे अपनी इसी व्यवस्था को प्रकट करते हुए कहती हैं कि फिर चाहे उन्हें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो मुरली की धुन उनके कानों में प्रविष्ट हो जाएगी, उसके बाद वे कुछ नहीं कर सकती हैं। फिर चाहे उन्हें कोई कितना भी समझाए, वे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कृष्ण की वे दीवानी हो जाएंगी। किसी तरह से उन्होंने अपने को रोक रखा है, लेकिन मुरली की धुन सुनने के बाद उनका अपने ऊपर वश खत्म हो जाएगा, वे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है, उनकी मायरी वा मुख की मुस्कानी, कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है, उनके वश में हो जाता है, चाह कर भी अपना सुदबुद्ध खो बैठता है, चाह कर भी उनसे अलग नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वे सारी लोक लाज शर्म हया छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी, इसलिए कहती हैं कि हम सब अपने कानों में उंगली डालकर रखेंगी ताकि कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि हमारे कानों में न पड़े और हम अपना सुदबुद्ध ना खोएं। गोपियों की मनोदशा का कितना सुंदर चित्रण हुआ है इस चौथे सवैये में। गोपियाँ, इसका भाव क्या है? गोपी उसके प्यार में, उसके भक्ति में इतनी लीन है कि स्वयं को संभाल नहीं पाती है। वह कृष्ण के प्रति पूर्णता समर्पित है, पूर्णता समर्पित है, अपना सब कुछ खो बैठती है। इस तरह श्री भाव यह है कि श्री कृष्ण ने इस तरह सारे ब्रजवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है और सभी उस कृष्ण की मुरली की धुन के कायल हैं।